नमस्कार भारत, 5 दिसंबर दिन बुधवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए मिशेल का भारत प्रत्यर्पण, देर रात दिल्ली लाई सीबीआई टीम, सियासत पर कितना असर?
लोकसभा का चुनाव है अगले साल, उसमें काफी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी रफेल फाइटर खरीदे हैं, उसमें कह रहे हैं गोलमाल हुई है।
राजस्थान और तेलंगाना में आज थमेगा चुनाव प्रचार, मतदान के पहले तेलंगाना में अटपटे टोटके आजमाने का शक। और खास रिपोर्ट, कहां गुम हुई दिल्ली के आश्रय गृह से 9 लड़कियां।
9 की 9 लड़कियां वो है जिनको जीबी रोड से हमने रेस्क्यू कराया था और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने रेस्क्यू कराया।
बुलंदशहर का अपडेट भी लेंगे, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पण के बाद देर रात मंगलवार भारत लाया गया। साल 2017 में उन्हें दुबई में गिरफ्तार किया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड को सौदा दिलाने के मामले में मिशेल पर बिचौलिए की भूमिका निभाने और भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने का आरोप है। नाटो देशों ने रूस पर परमाणु हथियारों में कमी करने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। नाटो देशों के आधिकारिक तौर पर रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये संधि शीत युद्ध से पहले हुई थी। ब्रसेल्स में हुए सम्मेलन के दौरान संगठन देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि मॉस्को ने एक ऐसी मिसाइल प्रणाली विकसित कर ली है जिससे यूरो अटलांटिक की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर रूस संधि का अनुपालन नहीं करता है तो 60 दिनों के भीतर अमरीका मध्यम रेंज की परमाणु हथियारों की संधि को खत्म कर देगा। इससे पहले अक्टूबर महीने में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अमरीका इस समझौते को खत्म कर देगा। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, इन 60 दिनों में हम ना तो कोई परीक्षण करेंगे और ना ही कुछ बनाएंगे और ना कुछ और करेंगे। हम सिर्फ इस बात पर नजर रखेंगे कि इन आने वाले 60 दिनों में क्या होता है। ये थे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी 2 दिवसीय पुर्तगाल यात्रा पर हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन वहाँ बड़े यूरोपीय निवेशों की घोषणा कर सकता है। दोनों देशों के बीच इस दौरान कुछ प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं को लेकर समझौता होने की भी उम्मीद है। खबरें हैं कि चीन की वित्तीय मदद को पुर्तगाल की बेहतरी से जोड़कर देखा जा रहा है। पुर्तगाल को चीन से ये मदद उस वक्त मिली है जब उसके पारंपरिक सहयोगी देश निवेश के लिए आगे नहीं आए। लेकिन बीजिंग के इस तरह बढ़ते प्रभाव ने कुछ यूरोपीय देशों की सरकारों को चिंता में डाल दिया है। पुर्तगाल के ऊर्जा और बीमा उद्योग में चीन पहले से ही एक बड़ा हिस्सेदार है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी सीनेटरों का कहना है कि CIA से मिली जानकारी के बाद ये पहले से कहीं अधिक साफ हो गया है कि पत्रकार जमाल खाशुजी की हत्या में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका थी। सीनेटर बॉब कोरकर ने कहा कि इस बात में अब रत्ती भर का भी संदेह नहीं रह गया है कि क्राउन प्रिंस सलमान ने ही पत्रकार जमाल खाशुजी की हत्या का आदेश दिया था। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी प्रिंस को सनकी और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की पूरी संभावना लगती है कि वो खाशुजी की हत्या में बड़े स्तर पर शामिल थे। मुझे लगता है कि खाशुजी की हत्या के पहले से ही उनका व्यवहार बेहद अजीब था और मैं उन्हें अमेरिका के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के तौर पर नहीं देखता। मुझे लगता है कि वे खतरनाक व्यक्ति हैं। हूती विद्रोहियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन पहुंच गया है, जहां इस सप्ताह यमन सरकार के साथ एक शांति वार्ता होनी है। संयुक्त राष्ट्र के दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स इन विद्रोहियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। यमन के विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होने के लिए आज स्टॉकहोम पहुंचेगा। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का हाथ से लिखा एक खत न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान करीब 2 अरब रुपये में बिका। ये खत धर्म के संबंध में लिखा हुआ है। इस खत में आइंस्टीन ने लिखा है कि उनके लिए भगवान शब्द सिर्फ एक अभिव्यक्ति है और मानव कमजोरी का एक परिणाम है। आइंस्टीन ने यह खत अपने 74वें साल में लिखा था। यह खत उन्होंने जर्मनी के फिलोसोफर को लिखा था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। सियासी तौर पर अहम वक्त में एक ऐसा मामला फिर से गर्म हो गया है जिसे लेकर भारतीय राजनीति के दो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान होती रही है। ये मामला है अगस्ता वेस्टलैंड का। यूपीए सरकार के दौरान वीवीआईपी लोगों के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ था। इस मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को लेकर कल देर रात तक दुबई से लेकर दिल्ली तक हलचल रही। सीबीआई की एक टीम मिशेल को लेकर देर रात दिल्ली पहुंची। मिशेल को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मिशेल का प्रत्यर्पण कैसे हुआ और हेलीकॉप्टर सौदे में उनकी क्या भूमिका है, ये बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद है बीबीसी संवाददाता भूमिका राय। जी भूमिका,
शुक्रिया वात्सल्य जी। कल देर रात क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। हालांकि रात करीब 10:30 बजे ही ये खबरें आने लगी थी कि उन्हें एक विशेष विमान लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। हमने खबर की पुष्टि के लिए जब सीबीआई हेडक्वार्टर में बात की तो एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उनका विमान कुछ देर पहले ही आया है। हालांकि जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या उन्हें आज यानी बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा तो इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बताते चलूं कि भारत सरकार एक लंबे समय से इस दिशा में प्रयास कर रही थी और इसके लिए बकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन को यूनिकॉर्न नाम दिया गया था। ये ऑपरेशन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निर्देशन में चल रहा था और सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे।
जी, सीबीआई ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके जरिए ये जानकारी दी। भूमिका, हम ये जानना चाहेंगे पूरा मामला है क्या और मिशेल इतने इंपॉर्टेंट क्यों माने जा रहे हैं इस मामले में।
अगर कम शब्दों में कहूं तो ये पूरा मामला यूपीए के कार्यकाल में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में हुए करीब 3600 करोड़ रुपए के हेरफेर का है।
हेरफेर करने की पूरी डील ही 3600 करोड़ रुपए।
हाँ, और इसमें मिशेल की भागीदारी इसलिए है क्योंकि इन्हें बिचौलिए के तौर पे देखा जा रहा है और इन्हें रिश्वत, भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी के तौर पे देखा जा रहा है।
जी हाँ, उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए कि उन्होंने रिश्वत दी अधिकारियों को, इस तरह का मामला है। ये पूरी डील 3600 करोड़ रुपए की थी जो यूपीए सरकार के दौरान हुई थी।
जी, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्हें उन पर साल 2012 में ये आरोप जो थे लगे थे, लेकिन उसके बाद से आरोपों से बचने के लिए और जांच से बचने के लिए वो फरार हो गए थे। इसके बाद सितंबर 2015 में मिशेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और साल 2017 में उन्हें दुबई में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से भारत सरकार लगातार प्रयासरत थी और कल फाइनली उनको यहाँ पर लेके आया गया। हालांकि अब आगे क्या होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके आ जाने से
भारत आ गए,
राजनीतिक सरगर्मी जरूर बढ़ जाएगी।
जी, जैसा आपने कहा, मिशेल के प्रत्यर्पण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है, लेकिन मिशेल का भारत आना कितना बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ ही नवीन नेगी ने यह सवाल किया रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी से।
ये काफी बड़ा कदम है, इसके आने के बाद तमाशा चालू हो जाएगा क्योंकि इसमें काफी इम्पोर्टेंट प्लेयर है ये अगस्ता वेस्टलैंड में, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें काफी हद तक थी। क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कहाँ तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या वो एजेंट थे, कितनी उनको कमीशन मिली, ये तो सब चीजें अभी पता नहीं लगी और ये सीबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पता लगाएगी, मगर इनका आना एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
खासतौर पर सर इस टाइमिंग को, जो ये वक्त है चुनावों का वक्त को देखते हुए, कितना महत्वपूर्ण है ये उनका आना इस टाइम पे।
ये जो लोकसभा का चुनाव है अगले साल अप्रैल मई में, उसमें काफी इस पर असर पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये रफेल फाइटर का जो एक्विजिशन है, जो रफेल फाइटर खरीदे हैं उसमें कह रहे हैं गोलमाल हुई है, मगर उसमें कुछ साबित नहीं हुआ और वो मामला कचहरी में है अभी। मगर ये अगर क्रिश्चियन माइकल साहब बोल पड़े कि इसमें भी कुछ गड़बड़ थी ये वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीदारी में, तो ये कांग्रेस को काफी इससे सदमा लग सकता है।
और बीजेपी के नजरिए से देखें तो उनके लिए कितने फायदे का सौदा होगा, क्योंकि वे लगातार इस मामले को उठाते रहे थे कांग्रेस के खिलाफ।
बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये क्रिश्चियन माइकल के साथ इन्होंने क्या सौदा किया है, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि बातचीत तो हुई होगी जब वो दुबई में थे, हमारे लोग भी आते जाते रहते थे, हमारी एजेंसी के लोग, इंटेलिजेंस एजेंसी के, सीबीआई के, ये सुनने में आता है कि उनकी मुलाकात होती रहती थी क्रिश्चियन माइकल के साथ। कोई एक दो महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू भी दी थी कि ये उनकी जो एक्सट्रेडिशन है वो मुमकिन होगी, तो ये बात साबित है कि उनसे कोई काफी हद तक बातचीत हुई होगी।
एक सवाल ये जानना चाहेंगे, जो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे, कि कितनी कोशिशें सरकार ने की क्रिश्चियन को वापस लाने की पिछले कुछ सालों में?
ये तो इसकी जो एक्सट्रेडिशन है वापस लाने की कोशिश, ये तो काफी देर से चालू है, क्योंकि ये जो अगस्ता वेस्टलैंड का स्कैंडल था और जो इस पे बैन लगाया, ये जनवरी 2013 की बात है। लगभग एक साल बीजेपी की बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले, तो ये एक्सट्रेडिशन इसकी 2014 के से लगभग चल रही है और इसको चार साल लग गए हैं, और ये बीजेपी की किस्मत अच्छी है, पर ये डिपेंड करता है उन्होंने उससे क्या बातचीत की है और वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है।
क्या इस प्रत्यर्पण के बाद, जैसे कि विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो, इनके प्रत्यर्पण की बातें भी और जोर पकड़ने लगेंगी?
उनमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि उधर जैसे यूके में है, जैसे माल्या है, मोदी है, वो दूसरे मोदी साहब हैं जो जूलर हैं, उनकी जो वो जुडिशियल प्रोसेस से आते हैं। यूएई का जुडिशियल प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ एक शेखडम है, तो शेख का इन्फ्लुएंस और शेख का जो कमांड है वो ज्यादा है, तो यूएई पे शेख की डिपेंडेंसी ज्यादा है बनिस्पत यूके और बाकी जो मुल्क हैं, उनकी जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं वो उनकी सरकार की बात हर बार नहीं मानते, पर ये यूएई में शेख साहब सुप्रीम है।
ये थे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी, जिन्हें लगता है कि क्रिश्चियन मिशेल का भारत आना सियासत में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन क्या आज राजस्थान में इस मामले की गूंज सुनाई देगी? राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन के लिए राजनीतिक दलों की क्या तैयारी है, ये बताने के लिए हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नारायण बारेठ। जी नारायण जी, स्वागत है आपका। प्रचार का आखिरी दिन
आज, प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी होंगे। इसके अलावा प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेता जगह जगह आवाम से मुखातिब होकर वोट मांगेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कल सभाएं संबोधित कर गए हैं। अब प्रचार का दारमदार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुडा और राज बब्बर जैसे नेताओं पे मैसर करता है। आज रोड शो भी किए जाएंगे, अमित शाह रोड शो करेंगे। और जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो बात दोनों पार्टियों ने विकास के मुद्दों पर की थी, लेकिन देखते देखते इसमें अली आ गए, बली आ गए, जाति आ गई, उपजाति आ गई, गोत्र आ गए, धर्म आ गए, मंदिर मस्जिद सब आ गए।
जी नारायण जी, मैं जानना चाहूंगा कि मुद्दे बदल रहे हैं तो क्या मतदाताओं का मन भी बदल रहा है या मतदाता मन बना चुके हैं?
जो लोग फील्ड में घूम कर आए हैं पत्रकार, उन लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे कि धरातल पे अब भी हालत जस के तस है। खासतौर पे बेरोजगार युवा, किसान, कर्मचारी, दलित सरकार के प्रति बहुत गुस्सा रखते हैं और उन्हें नहीं लगता कि 5 दिन के प्रचार के छींटों से शायद उनका मानस बदल जाए। लेकिन दूसरी धारा ये भी कहती है कि माहौल प्रचार हो सकता है मतदाता के मानस पर कोई प्रभाव डाले। तो जो 4,74,00,000 मतदाता है उनको प्रभावित करने के लिए दोनों सत्ता के प्रबल दावेदार प्रयास कर रहे हैं। कहना मुश्किल है कि वो किसके भाल पे भाग्य की इबारत लिखेगा।
जी, और प्रचार के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। शुक्रिया नारायण जी इस अपडेट के लिए। आज प्रचार तेलंगाना में भी थम जाएगा। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 7 दिसंबर को ही वोटिंग होनी है। खबरें हैं कि चुनाव में कुछ प्रत्याशी टोटकों का भी सहारा ले रहे हैं और इसके लिए उल्लुओं की मांग बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
सामान्य परिस्थितियों में चुनाव के समय अधिकारियों की नजर राजनीतिक पक्षों पर इसलिए होती है कि वो किस तरह की रिश्वत मतदाताओं को देते हैं, लेकिन जब तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं तो पड़ोसी राज्य कर्नाटका के अधिकारी थोड़ा परेशान लग रहे हैं। कारण इतना ही है कि उनकी फिक्र भ्रष्टाचार की वस्तुओं पर नहीं बल्कि उल्लू पर है। आमतौर पर उल्लू का उपयोग काला जादू और अन्य अंधविश्वासों से जुड़ी मान्यताओं के लिए किया जाता है, कर्नाटका के कलबुर्गी जिले के सेडम तालुक की पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो 2 उल्लुओं की तेलंगाना में तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। कलबुर्गी सब डिवीजन के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रामकृष्ण यादव ने कहा, वो हमें ये नहीं बता रहे हैं कि उनसे उल्लू कौन खरीद रहा है, लेकिन उसने उल्लू को पाला है बागलकोट जिले के जमखंडी तालुक में और यहाँ सेडम में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ये थे रामकृष्ण यादव के शब्द। हिरासत में लेने के बाद पुलिस और वाणिज्य इलाके के अधिकारियों को पता चला कि वो उल्लू को चुनाव में उपयोग करने के लिए तेलंगाना ले जा रहे थे। दरअसल इस परिंदे के शरीर के अंग का तांत्रिक गतिविधियों के लिए इतने बहुत बुरे तरीके से उपयोग किया जाता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2010 में ट्रैफिक इंडिया के लिए एक रिपोर्ट में पक्षी विज्ञानी अबरार अहमद ने जिस तरह उल्लुओं पर अत्याचार किया जाता है उस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में उल्लुओं के शरीर के 39 हिस्सों का जिक्र था जिनका उपयोग तांत्रिक गतिविधियों में किया जाता है। ट्रैफिक इंडिया के प्रमुख और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर डॉक्टर साकेत बडोला ने बीबीसी को बताया,
हर चीज का अलग अलग इस्तेमाल है, तो चाहे वो वशीकरण से लेके या धन वृद्धि से लेके कहीं सफलता दिलाने से लेके किसी दूसरा जो आपका विरोधी है उस पर कंट्रोल करने से लेके सब तरह की बातें जो है तांत्रिक जो है वो समझाते हैं कि इसके लिए इसके इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑब्वियसली मतलब ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट देन अगेन क्योंकि तंत्र विद्या में इसका यूज होता है तो इसीलिए उसका इंटरनेशनल मार्केट और जो मार्केट है उसमें उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
ट्रैफिक इंडिया देश में कानूनी और गैर कानूनी कारोबार पर नजर रखता है और हाल ही में दिवाली के अवसर पर सलाहकार निकाली थी कि किस तरह उल्लू खराब परिंदा नहीं है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर असद रहमानी समझाते हैं,
एक तो ये पार्ट है इकोसिस्टम का, दूसरा ये अगर आपको फायदा ही देखना है तो ये बहुत ही चूहे खाता है, खासतौर से बावन ऑल है, जितने भी ऑल है और भी और है, ये चूहे खाता है, सांप खाता है और क्रिकेट है, क्रिकेट मतलब क्रिकेट गेम नहीं बल्कि एक इंसेक्ट होते हैं, ये इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं। ज्यादातर उल्लू जो है ये है कार्निवोरा जिसे कहते हैं ना, दूसरा जानवर खाते हैं, तो इस तरह से इनका भी एक अपने इकोसिस्टम में अपना अपना रोल है, अपना मुकाम है इन लोगों का। तो ये और कुछ उल्लू जो है बड़े खासतौर से उल्लू है, ये इंडिकेटर है बहुत अच्छा एनवायरमेंट का।
डॉक्टर रहमानी ये भी बताते हैं कि तांत्रिक और अंधविश्वास मान्यताओं की वजह से ये स्पष्ट है कि उल्लुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। कारण ये भी है कि उल्लू साल में 1 या 2 समय ही बच्चे पैदा करते हैं, मतलब ये कि हमारी प्रकृति के लिए उल्लू बेहद जरूरी है। इन्हें मारकर आप उल्लू ना बने। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। यहां 2 दिन पहले भीड़ के हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बुलंदशहर में हैं और फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी नितिन जी, क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
ताजा जानकारी वास्तव में ये है कि हमारी कल देर रात पुलिस के अफसरों से बात हुई है। जो 3 अभियुक्त जो इनको इन्होंने गिरफ्तारी की थी उनको बुलंदशहर की कोर्ट में पेश किया गया है और उनको वहां पर उसके बाद उनको रिमांड पर लिया गया है। उसके अलावा पुलिस से ये कहना है कि वो तमाम जगह दबिश मार रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ पर लोगों में इस बात को लेकर खासा रोष है, खासा गुस्सा है कि इस तरह का जो एक मामला था जिसमें कथित गोमांस बरामद होना और उसके बाद रोड जैम कर देना और उसके बाद इस तरह की हिंसा होना, वो उससे इलाके की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। लोग तो जाहिर है आहत हुए हैं, नुकसान भी हुआ है, लोगों की जान भी गई है, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो इसलिए ले दे के यहाँ पर अब तनाव थोड़ा कम होता लग रहा है, जितना परसों जब हम यहाँ पहुंचे थे तो एकदम कर्फ्यू जैसे हालात थे, तनाव जाहिर है थोड़ा कम होता दिख रहा है, लेकिन जो घाव हैं इस घटना के उनका भरना
अभी मुझे लगता है एक लंबा समय लगेगा।
जी नितिन जी, मैं यही आपसे समझना चाहूंगा कि जिस वक्त एक मिसाल दी जा रही थी बुलंदशहर की, जहां मंदिर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई, फिर अचानक ये घटना जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया, सरकार प्रशासन सभी लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, सभी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और एक और बात है वास्तव में जो जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, वो सवाल ये है कि आखिर एकाएक जो कथित तौर पर गोमांस की और इतने भारी मात्रा में गोमांस की बरामदगी की बात हो रही है, हमने वो ट्रैक्टर ट्रॉली देखी है जो पुलिस थाने के सामने जिस ट्रॉली में उसको गाँव के लोग लेकर आए थे, और वो काफी बड़ी मात्रा में दिखती है। तो उसमें जिस भी जानवर के अवशेष थे, हमने तो देखे नहीं है, लेकिन जो वायरल वीडियोस वगैरह में देख के समझ में आ रहा है वो बहुत बड़ी मात्रा में थे। एक बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है वो ये है कि आखिर वो बुलंदशहर में महाव नाम का जो गाँव है उस थाने के पास, वहां पर रातों रात कैसे पहुंचा, कौन उसको लेके आया।
जी, इन सवालों की तलाश है। शुक्रिया नितिन जी अपडेट के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। भूमिका राय तैयार है अखबारों के साथ। जी भूमिका
जी, एक बार और शुक्रिया वात्सल्य जी। दिल्ली से छपने वाले लगभग हर अखबार ने अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। इसके अलावा अगर दूसरी खबरों की बात करें तो बुलंदशहर हिंसा में बजरंग दल के एक सदस्य का नाम सामने आया है, और इंडियन एक्सप्रेस ने इसी खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने क्रिकेटर गौतम गंभीर के संन्यास लेने की खबर को प्रमुखता से छापा है। गंभीर ने ट्वीट करके इस बारे में बताया और कहा कि अब इसके साथ ही वो मतलब किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। और इसी
2007 और 2011 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में
अहम भूमिका थी उनकी बेशक। इसी अखबार की एक दूसरी खबर की बात करें तो कश्मीर में अब पैलेट गन की जगह एक नया प्रयोग किया जाएगा। पत्थरबाजों पर अगले साल से चलेंगे मिर्ची के गोले, ये खबर छापी है दैनिक हिंदुस्तान ने। और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो ये एक बड़ी खबर है कि पहले केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने बता दिया था कि वो लोकसभा चुनाव के लिए नहीं खड़ी होंगी। अब उमा भारती ने घोषणा की है कि अब वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो बीजेपी की दो कद्दावर महिला नेताओं का इस तरीके से लोकसभा चुनावों से पीछे हट जाना
2019 के।
बेशक, तो ये एक बड़ी खबर है। और जैसा सुषमा स्वराज ने कहा था कि वो अपनी सेहत की वजह से हैं, उमा भारती की तरफ से अभी कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया है, और नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को अपने पन्ने पर जगह दी है। इसके अलावा महिलाओं के हित की एक खबर की बात करें तो AC 3 टियर जो ट्रेन है उसमें महिलाओं के लिए 6 और बर्थ जो हैं वो रिजर्व हो गई हैं। अभी तक जो 6 बर्थ थी, लेकिन उसके अलावा 6 और बर्थ महिलाओं के लिए कर दी गई हैं। इसमें
AC 2 टियर में या 3 टियर
में? AC 3 टियर में, और ये उन ट्रेनों के लिए है जो पूरी तरह वातानुकूलित हैं, जैसे राजधानी है, दुरंतो है, इन ट्रेनों में अब महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। तो ये एक महिलाओं के हित की खबर है और जनहित की भी खबर है।
जी बहुत शुक्रिया भूमिका राय अखबारों की समीक्षा के लिए। और अगली खबर दिल्ली से, जहां एक महिला आश्रय गृह में रहने वाली 9 लड़कियां अचानक लापता हो गईं। क्या है पूरा मामला, सुनिए कमलेश मठेनी की रिपोर्ट में।
दिल्ली में एक आश्रय गृह से 9 लड़कियां अचानक लापता हो गई हैं। ये आश्रय गृह दिलशाद गार्डन में स्थित संस्कार आश्रम परिसर में बना है। ये घटना 1 और 2 दिसम्बर रात की है। 2 तारीख की सुबह जब हाजिरी के समय आश्रय गृह के स्टाफ को इसका पता चला तो उन्होंने GTB एनक्लेव थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। गायब हुई 9 लड़कियों में से एक बिहार की है और वो नाबालिग है, बाकी 8 लड़कियां नेपाल से हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस भी ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। एक तरह से आश्रय गृह और पुलिस दोनों ने चुप्पी साध ली है। काफी कोशिशों के बाद DCP शाहदरा मेघना यादव ने बताया,
वो मैं आपको डिटेल तो नहीं दे पाऊंगी कि हम किस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब FIR दर्ज है, मेरी इन्वेस्टिगेटिंग।
ये थे DCP शाहदरा मेघना यादव के शब्द। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन लड़कियों को रेड लाइट एरिया GB रोड से छुड़ाया गया था। इसके बाद उन्हें द्वारका स्थित आश्रय गृह में रखा गया। इन लड़कियों को इस साल मई में संस्कार आश्रय गृह में लाया गया था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी आश्रय गृह पहुंची। उन्होंने लड़कियों के वापस वेश्यावृत्ति में पहुंचने की आशंका जताई और दिल्ली सरकार से आश्रय गृहों की व्यवस्था सुधारने की अपील की। उन्होंने कहा,
9 की 9 लड़कियां वो हैं जिनको जीबी रोड से हमने रेस्क्यू कराया था और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने रेस्क्यू कराया था। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है पुलिस के साथ मिलकर जीबी रोड बंद कीजिए। साथ ही दिल्ली सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बड़ी मुश्किल से जान पे खेल के हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद शेल्टर होम्स में जाती है, वहाँ पे ऐसा असंवेदनशील माहौल है कि लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
ये थी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। वहीं बीजेपी ने इस मामले के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इलाके के निगम पार्षद और बीजेपी नेता वीर सिंह पवार मामले की जानकारी लेने के लिए आश्रय गृह पहुंचे थे। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा,
मुझे समझ नहीं कड़ी होगा क्या, इस दिल्ली का होगा क्या, कल और कुछ होगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये तो कुछ भी बोले, कहाँ से लाए थे, कैसे, वो एक नारी है, मैं बोलूँ कहीं से भी लाई है, आपका क्या है उसको जीबी रोड से लाई?
ये थे बीजेपी के निगम पार्षद वीर सिंह पवार। संकल्प आश्रय गृह के परिसर में लड़के और लड़कियां दोनों के हॉस्टल हैं। यहां रहने वाली लड़कियां इलाके के सरकारी स्कूल में ही पढ़ती हैं। यह आश्रय गृह महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आता है। ये विभाग उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्व WCD के जिला अधिकारी और संकल्प आश्रय गृह के सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी संस्कार आश्रय गृह में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत मिल चुकी है। महिला आयोग ने इस बारे में बताया है कि उस मामले में सुपरिटेंडेंट को निलंबित न करके बल्कि ट्रांसफर कर दिया गया था। अब वो पुराने और नए दोनों मामलों को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कमलेश मठेनी, BBC दिल्ली।
और अब सुनाते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के मिडफील्डर लुका मोडरिच ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे सितारों को पछाड़कर फीफा के वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीत लिया है। पिछले 10 साल से इस पुरस्कार पर रोनाल्डो या मेसी का ही कब्जा था। इस बार रोनाल्डो दूसरे, फ्रांस और एटलेटिको मैड्रिड के स्ट्राइकर ग्रिजमैन तीसरे स्थान पर रहे हैं। पहली बार महिला वर्ग में भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का ऐलान किया गया और लियोन तथा नॉर्वे की स्ट्राइकर अदा हेगरबर्ग ने बाजी मारी। इटली की फैबियो ने 2006 में 33 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार जीता था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज बड़े बड़े मुकाबले हैं प्रीमियर लीग में। एक तरफ बर्नले और दूसरी तरफ लिवरपूल, वहीं एवर्टन वर्सेस न्यूकैसल यूनाइटेड, फुलहैम वर्सेस लेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल और टॉटनहैम हॉटस्पर वर्सेस साउथहैम्पटन। और अब बात हॉकी की। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज पूल डी में भिड़ेंगी जर्मनी और नेदरलैंड्स और दूसरी तरफ होंगे पूल डी में मलेशिया और पाकिस्तान। और अब जाने से पहले बात कबड्डी की। शानदार डिफेंस के दम पर यू मुंबा ने प्रो कबड्डी लीग के छठे स्तर के मुकाबले में गुजरात फॉर्च्यून जाइंट्स को 36-26 से हराया। PKL के इतिहास में यू मुंबा की गुजरात फॉर्च्यून जाइंट्स पर ये पहली जीत है। यू मुंबा ने इस मैच में 16 टैकल अंक जुटाए जो कि रेडर्स के अंक से ज्यादा थे। टीम के लिए धर्मराज ने 6 और रोहित राणा ने 5 अंक बटोरे। गुजरात फॉर्च्यून जाइंट्स के लिए सचिन ने 8 जबकि प्रापंजन ने 4 अंक बटोरे, लेकिन ये टीम की जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और हम आपको बता दें कि विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। कल से एडिलेड में पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। भारतीय टीम के लिए मौजूदा दौरे को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका माना जा रहा है। ये मैच कल सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
BBC समाचार। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में बिचौले की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पण के बाद मंगलवार देर रात भारत लाया गया। नाटो देशों ने रूस पर परमाणु हथियारों में कमी करने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी 2 दिवसीय पुर्तगाल यात्रा पर हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन वहां बड़े यूरोपीय निवेशों की घोषणा कर सकता है। अमरीकी सीनेटरों का कहना है कि CIA से मिली जानकारी के बाद ये पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है कि पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका थी। हुती विद्रोहियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन पहुंच गया है, जहां इस सप्ताह यमन सरकार के साथ एक शांति वार्ता होनी है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।